Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ayatan ke jo anga hai, us tattar indriyon ke golak asra hai. उन गोलकों में इंद्रिय न हो तो रूप ग्रहणादि रूप व्यापार नहीं हो पाएगा। ऐसे 17 इंद्रियों तत्वों का अलग अलग आयतन है, तो मन का आयतन है हृदय, तो हृदय में ही परमात्मा भी है, हृदय में ही मन भी है, इसलिए मनोपाधिक माना जाता है ब्रह्म को। एक ही स्थान में आपका, जहां आपका मन है हृदय रूपी गोलक में, उसी हृदय रूपी गोलक में परमात्मा भी है मन के साक्षी के रूप में। और उस चेतन परमात्मा के साथ मन का संबंध है, तादात्म्य संबंध है। इसलिए मन क्या करता है कि स्मरण भी करता है, स्मरण ये व्यापार है मन का, संकल्प रूप व्यापार भी है मन का। तो मन के जो अनेक प्रकार के संकल्प हैं, और एक बार नहीं अनेक बार होने वाले, अभिक्षणम संकल्प शब्द का अर्थ है अनेक संकल्प, जितने भी मन के संकल्प होते हैं उन संकल्पों को आप जान लेते हैं, संकल्प प्रकाशित होते हैं, अज्ञात नहीं रहते। ऐसे मन का जो स्मरण रूप व्यापार है, संकल्प रूप व्यापार है, मन जड़ होते हुए भी जड़ मन में जो स्मरण रूप व्यापार हो रहा है, जड़ मन में जो अनेक बार संकल्प रूप क्रिया व्यापार हो रहा है, तो ये देखा जाता है कि अचेतन अर्थात जड़ पदार्थ में बिना चेतन के कोई क्रिया नहीं होती। चेतन अधिष्ठित जड़ ही सक्रिय होता हुआ देखा गया है, चेतन से प्रेरित जड़ में क्रिया देखी गई है, और मन जड़ होता हुआ भी स्मरण रूप व्यापार में प्रवृत्त हो रहा है, जड़ मन में संकल्प हो रहा है, और वो संकल्प ज्ञात हो रहा है। जानना ये चेतन का धर्म है। इसका अर्थ है कि जैसे शीतल अग्नि में यदि औष्ण्य प्रतीत होता है, उष्णता प्रतीत होती है, गर्म जल प्रतीत होता है, तो माना जाता है जल का तो अपना निजी धर्म तो शीतलता है, तो शीतल जल भी यदि उष्ण प्रतीत होता है तो मानना पड़ता है कि जल का, जल के साथ उष्णता का आश्रयभूत जो अग्नि है, तेज है, उसका संपर्क हुआ है। उष्णता के आश्रयभूत उष्ण अग्नि के संपर्क के बिना जल में उष्णता असंभव है। ऐसे जड़ मन में जो सुख दुखादि की प्रतीति हो रही है, का मतलब ज्ञान हो रहा है, चैतन्य भास रहा है, वह प्रकाशक के रूप में भास रहा है, स्मरण कर रहा है, संकल्प कर रहा है, ये जो चेतन के धर्म उसमें प्रतीत हो रहा है। तो माना जाता है कि एक चेतन का तादात्म्य उस मन के साथ है, मन का चेतन के साथ संपर्क होने से ही मन में स्मरण और संकल्प रूप व्यापार हो रहा है, अन्यथा जड़ मन में यह संभव नहीं है। तो ये जो मन रूपी उपाधि है, और उस मन रूपी उपाधि में होने वाला स्मरण रूप व्यापार, संकल्पादि रूप व्यापार, ज्ञानात्मक जो व्यापार है अपने अपने विषयों का, श्रोत्र इंद्रिय ने मन को रूप के साथ जोड़ दिया तो लगता है कि मन रूप को प्रकाशित कर रहा है। रूप के आकार की वृत्ति जिसको आप ज्ञान कहते हैं ये मन की तो बनती है, तो मन की रूपाकार वृत्ति ने, चक्षु इंद्रिय से बनी हुई रूपाकार वृत्ति ने रूप को प्रकाशित कर दिया। श्रोत्र इंद्रिय से मन में ही शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न हुई तो शब्द को प्रकाशित कर दिया मन ने, ऐसा भान हो रहा है। प्रकाशित करना, ग्रहण करना ये चेतन का धर्म होता है, लेकिन श्रोत्र शब्द का ग्रहण, रूप का ग्रहण तो एक तो वृत्त्यात्मक है ना, वो वृत्ति है मन की। इसका अर्थ है कि मन में ये रूपादि का ग्रहण, रूप चैतन्य का व्यापार प्रतीत हो रहा है। जैसे शीतल जल में उष्णता की प्रतीति हो रही है तो उष्णता वस्तुतः जिस अग्नि में रहती है उस अग्नि के संपर्क से मानी जाती है शीतल जल में उष्णता ही। ऐसे शब्दादि का ग्रहण, ज्ञान प्रतीत हो रहा है मन में और है वो वस्तुतः ज्ञान, ये स्वरूप आत्मा का, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां ज्ञान स्वरूप तो बता रही है आत्मा को, ब्रह्म को। तो ज्ञान स्वरूप जैसे उष्ण स्वरूप अग्नि के संपर्क से जल में उष्णता है, ऐसे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के संपर्क से ही माना जाता है कि मन में ये रूपादि का ग्रहण, रूप ज्ञान है। तो इस उपाधि से, मन रूपी उपाधि से चेतन आत्मा का, ब्रह्म का इस प्रकार भान हो रहा है। और इससे ये बताया जा रहा है, एक अध्यात्म गुण बताया गया कि मन में चैतन्य का संपादक आत्मा है, चेतन है, ब्रह्म है इस रूप से। और ये मन ब्रह्म का चैतन्य ये किससे ज्ञापित हो रहा है, मन रूपी आध्यात्मिक उपाधि से। इसलिए यहां मन रूपी जो आध्यात्मिक उपाधि है और उस आध्यात्मिक उपाधि में जड़ उपाधि होते हुए भी उसमें चैतन्य की उपलब्धि हमें जिसके संपर्क से हो रही है वह चेतन आत्मा है और वही ब्रह्म है। कौन सा? जिसमें देवताओं को निमित्त बना करके अत्यंत ज्योति तेजस्वित्व और शीघ्र अनायास कार्यकारित्व गुण बताया था, वह ब्रह्म ही मन रूपी अध्यात्म उपाधि के साथ जब आता है तो प्रत्येक आत्मा के रूप में भासता है। तो इन दोनों श्लोकों को जोड़ करके एक ये उपासना बताई गई कि उस अत्यंत तेजस्वी और अनायास शीघ्र कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्म का चिंतन, उपासना जो करनी है वो मैं के रूप में करनी है, अहंग्रह उपासना करनी है। मन को रूपादि विषयों का प्रकाशन, ग्रहण करने की शक्ति मिल रही है जिस चेतन से, वो चेतन आत्मा मैं हूं और वो चेतन आत्मा ही आदिदेव उपाधि में इंद्रादि देवताओं के सामने अत्यंत तेजस्वी यक्ष रूप से प्रकट हुआ हुआ है और निमेश उन्मेष के तरह जगत उत्पत्त्यादि रूप व्यापार अनायास शीघ्र करने वाला है, ऐसा जो ब्रह्म है वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा चिंतन करने के लिए यहां पर ये श्रुति बता रही है। अत्यंत तेजस्वी अनायास समस्त कार्यों को अपने संकल्प मात्र से ही संपन्न करने वाला ब्रह्म ही अध्यात्म में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा के रूप में स्थित है और वो जो मैं हूं मन को भी संकल्पादि व्यापार करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला, जड़ मन में चैतन्य संपादन करने वाला, वो मैं ब्रह्म हूं। ऐसा मैं के रूप में चिंतन यहां पर श्रुति करने के लिए बता रही है। ये है अहंग्र उपासना, सगुण ब्रह्म की अहंग्र उपासना। यह उपासना उपासक यदि करता है तो उसमें निर्विशेष ब्रह्म को जानने की योग्यता आती है। एक प्रकार से उस ब्रह्म का ही जो सोपादिक स्वरूप है, अत्यंत तेजस्वित्व और अपने संकल्प मात्र से ही अनायास समस्त जगत की उत्पत्ति आदि रूप कार्यकारित्व रूपी ये दो गुण है, यह गुण किसी जीव विशेष में संभव नहीं है। वह अपनी उपाधि माया को लेकर के ब्रह्म में ही संभव है, जिसे पूर्व में विदित अविदित से अलग बताया था, प्रतिबोध विदितम मतम इत्यादि से समस्त बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में बताया था। वही ब्रह्म अपने में अध्यस्त शुद्ध सत्व प्रधान माया रूपी उपाधि को धारण करके अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति लय रूप कार्य अनायासी संकल्प मात्र से करने वाला बन जाता है। और वही ब्रह्म अपनी माया रूपी उपाधि को लेकर के मेरे मन को संकल्प विकल्प आदि अपना कार्य करने का सामर्थ्य दे रहा है, श्रोत्रादि इंद्रियों को अपने अपने शब्दादि विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त कर रहा है। और वो ब्रह्म मैं हूं, न कि उसकी प्रेरणा से प्रवृत्त होने वाले शरीर इंद्रियादि रूप मैं। ऐसा चिंतन ये है यहां पर बताई गई सगुण ब्रह्म की अहंग्रह उपासना। गीता में 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शरणं तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में प्राणी है, 84 लाख प्रकार के प्राणी, और उनके हृदय में स्थित होकर के परमात्मा उनको घुमा रहे हैं। किससे घुमा रहे हैं? तो माया, भ्रामयन सर्वभूतानि माया, वो तो माया है प्रकृति, उनके अपने संस्कार, उन संस्कारों के अनुसार। ईश्वर प्राणियों की उपाधिभूत शरीर इंद्रिय मन को चला रहे हैं, उनके संस्कार के अनुसार उनको तत्त कार्य करने में प्रवृत्त कर रहे हैं। जो ईश्वर, वही यहां पर अत्यंत तेजस्वी शीघ्र कार्यकारी ब्रह्म है उपासना के लिए चिंतनीय। और उसकी उपासना कहाँ करनी है? तो जहां पर मन है। मन कहाँ है? हृदय में। तो हृदय में हम सभी प्राणियों के हृदय में है, तो मेरे भी हृदय में है। तो वो मेरे हृदय में मेरे से भिन्न रूप में है या मैं के रूप में है? तो यहां श्रुति कहती है कि अभी अज्ञान अवस्था में तो जीव अपने आप को जो कर्म के अनुसार प्राप्त शरीर है तदात्मक ही समझ रहा है, मनुष्य रूप समझ, मैं मनुष्य हूं और कर्ता भोक्ता हूं इस रूप में। ये सारा का सारा वो तो ब्रह्म का रूप नहीं है। तो ये कह रही है श्रुति कि अपने हृदय में स्थित जो ब्रह्म है उसका मैं के रूप में ग्रहण करो। मैं के रूप में ग्रहण करने का अर्थ है कि आपकी अपनी अहम वृत्ति जो बन रही है, उस अहम वृत्ति को बनते समय ही सावधानी रखो कि अभ्यास वशात इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए हैं और प्रत्येक जन्म में जो भी कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त हुआ शरीर है, उसी शरीर को हम मैं के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हमारी अहम वृत्ति आलम्बन बना रही है शरीर को मैं के रूप में। तो यहां पर श्रुति भगवती मुमुक्षुओं का हितैषी बनकर के बता रही है कि उस अहम वृत्ति को अपने शरीर को अपना विषय मत बनने दो, यानी उस अहम वृत्ति का विषय मत बनने दो। उपासना का यहाँ का स्वरूप है कि आपकी अहम वृत्ति बने लेकिन वह आपके अन्नमय कोष रूपी स्थूल शरीर को विषय न बनाए, प्राण को भी मन को भी विषय न बनाए, लेकिन मन का भी जो प्रवर्तक है सबके हृदय में है तो मेरे भी हृदय में विद्यमान रह करके जो अत्यंत तेजस्वी शीघ्र कार्यकारी परमेश्वर है रह रहा है वो परमेश्वर मैं हूं, ऐसी उस सगुण ब्रह्म की मैं के रूप में उपासना, ये है अहंग्र उपासना। ऐसा ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्रह्म की अहंग्र उपासना होती है। तो इस अहंग्र उपासना से क्या होगा, आपका अनात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्माभिमान चला जाएगा और जो उपासना के लिए गुण बताए थे उसी सगुण ब्रह्म के अनुग्रह से फिर निर्गुण ब्रह्म का जो स्वरूप है वो स्वरूप भी आपके आत्मा के रूप में आपकी अहम वृत्ति में प्रकट होगा। भगवान कहते ही है ना कि जो मेरे सगुण साकार का अनन्य भाव से चिंतन करता है, सगुण साकार रूप का, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम यानी जो मेरे सगुण रूप का अनन्य भाव से चिंतन कर रहे हैं उन्हीं पर अनुकंपा करके, तेषाम एव अनुकंपार्थम, मैं क्या करता हूं, जब उनकी अहंग्रह उपासना परिपक्व हो जाती है, सारे वेष्टि अनात्म वस्तुओं में से आत्मभाव उनका निवृत्त होता है और मेरे सगुण साकार रूप को ही अनन्य भाव से आत्म रूप से ग्रहण कर रहे हैं, जो उनके पारमार्थिक स्वरूप विषयक अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम, अज्ञानस्तम है उनका भ्रम भ्रांति, उसे मिटाने के लिए क्या करता हूं, तो आत्मभावस्थ हो जाता हूं। का मतलब अहम ये जो वृत्ति है उस वृत्ति में अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्रकट कर देता हूं, उनके मैं के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को, स्वरूप का अनुभव कराता हूं, अहम वृत्ति में उनके अभिव्यक्त होता। आत्मभावस्थ होने का अर्थ ही है उनके अहम वृत्ति का आलंबन बनना। और जैसे ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप अहम वृत्ति का आलंबन बनेगा, यही तो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है। और ये साक्षात्कार जिसको होता है तो उसके फिर अज्ञान रूपी तम का, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार का, भ्रांति का नाश हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान ही एक अत्यंत तेजस्वी दीप है और वह अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। इसके लिए ये उपासना आवश्यक है ये बताया गया। ये जो उपासना जिस सगुण ब्रह्म की उपासना की जा रही है उसका एक उपासना के लिए नाम बताया जा रहा है छठवें मंत्र में। इसी के लिए है एक तदह तदवनम नाम। तो कहते हैं तत् यानी वो ब्रह्म एक वनम इस नाम से चिंतनीय है। तदवनम इस नाम से, तदवनम में तत् का अर्थ है सभी प्राणी और सभी प्राणियों का वह वन है। वन शब्द का अर्थ जंगल होता है प्रसिद्ध अर्थ तो, लेकिन यहां पर वन शब्द का अर्थ जंगल नहीं है, अरण्य नहीं है। वन का अर्थ है संभजनीय, सेव्य सेवनीय। तो तदवनम शब्द का अर्थ निकलता है प्राणी मात्र का संभजनीय है, प्राणी मात्र जिसका भजन करते हैं, सेवन करते हैं, जिसकी सेवा करना चाहते हैं, प्राणी मात्र जिसका भजन करना चाहते हैं उसे कहा जाता है तद्वन शब्द से। तो यह अत्यंत तेजस्वी अनायासी जगत उत्पत्त्यादि कार्य को शीघ्र संपन्न करने वाला सत्य संकल्प परमेश्वर का एक नाम है तद्वनम। जैसे हरि राम कृष्ण इत्यादि नाम होते हैं, ऐसे उपनिषद एक परमात्मा का तद्वनम नाम बता रही है। और तद्वनम इस नाम का अर्थ है, विष्णु सहस्त्र नाम में अनेक नाम बताए हैं परमेश्वर के, वस्तुतः उसका कोई नाम नहीं है। और जब उपाधि धारण करता है तो भक्त की भावना के अनुसार, भक्त उसमें जो गुण देखता है उस गुण का वाचक नाम उसी का हो जाता है। तो ये सगुण साकार जो चिंतनीय परमात्मा है, इसका एक नाम बताया कि वो तद्वनम नाम है। प्राणी मात्र जिसका भजन करना चाहते हैं, ऐसा ये तद्वनम शब्द का अर्थ होता है, सबका भजन भजनीय शब्द। अंतस्पूर्णा से ही सबको ये होता है कि मैं इनकी सेवा करूं, मैं इनका सेवक बनूं, मैं ये मेरे स्वामी बने, ऐसी प्राणी मात्र में जिनके विषय में भावना है, जो प्राणी मात्र के सेव्य है, वो है तद्वनम। तो ये जो अत्यंत तेजस्वी और शीघ्र कार्यकारी और मनादि के प्रेरक परमात्मा है, ये सबके भजनीय है, सेव्य है। इसलिए क्या करें, तो तद्वनम इस नाम का जो अर्थ है, इस अर्थ का अनुसंधान करते हुए तद्वनम इस नाम से ब्रह्म की उपासना करें। ये कहते हैं कि तद्वनम इति उपासितव्यम्, ब्रह्म का तद्वनम इस नाम से। जब ध्यान करना होता है तो एक मानस शब्द उच्चारण भी करना होता है, ऐसे अब जब करते हैं तो ऐसे मानस ब्रह्म का चिंतन करना है मन से ही। तो मन ही मन जब अत्यंत तेजस्वी शीघ्र कार्यकारी परमात्मा का मय के रूप में अनुसंधान करेंगे तो मानस एक मंत्र उच्चारण होगा, वह मंत्र होगा तद्वनम। और तद्वनम इस नाम का उच्चारण करते समय, तद्वनम इस नाम का जो अर्थ है वो अर्थ भी आपके ध्यान में आना चाहिए। तो तद्वनम का अर्थ है प्राणी मात्र के सेव्य, परमात्मा जो है वह मैं हूं, ऐसे मैं के रूप में उसका अनुसंधान करना है ना। तो तद्वनम इति उपासितव्यम्। तो ये तद्वनम इस नाम से परमात्मा की उपासना करने का फल बताया जा रहा है कि स य एतद एवं वेद अभिह एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। तो जो तद्वनम इस नाम के अर्थानुसंधान पूर्वक इस नाम का उच्चारण करते हुए ब्रह्म की उपासना करता है, तो इस नाम से तद्वन इस नाम से उपासना का फल है, इस नाम पूर्वक उपासना का, कि सर्वाणि भूतानि येनम अभिसंवांछन्ति। तो ये सभी प्राणी ब्रह्म की तद्वनम इस नाम से उपासना करने वाले उपासक को भी अभिवांछन्ति, चाहते हैं, का मतलब उसकी सेवा करना चाहते हैं। जैसे सेव्य है ब्रह्म, सेव्य ब्रह्म की सभी उपासना करना चाहते हैं, सब चाहते हैं ऐसे सेवा करना चाहते हैं, जैसे ऐसे उपासक की भी, क्योंकि अहंग्रह उपासना हो रही है ना। तो अहंग्रह उपासना का फल होता है उसका जब उपासना का परिपाक होगा तब फल माना जाता है। तो अहंग्रह उपासना का परिपाक कब माना जाता है? तो अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है जब आपकी अहम वृत्ति सहज अनायास उपास्य के स्वरूप को ही आलंबन बनाते हुए प्रकट हो रही हो। जैसे अज्ञान अवस्था में उपासना शुरू करने से पहले आपकी अहम वृत्ति का आलंबन आपका शरीर बनता है, आपकी अहम वृत्ति उत्पन्न होते होते आपको जो शरीर है उसी रूप में दिखाती है, का मतलब उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता शरीर को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाने के लिए, सहज बन जाता है। इतना सहज यहां पर जो उपास्य का स्वरूप बताया वह आपकी अहम वृत्ति का आलंबन बन जाए, इतना सहज तो माना जाता है आपकी अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया, परिपक साधना पूर्ण हो गई। इसे भोजन से भूख निवृत्त होती है, तृप्ति आ जाती है, लेकिन कब? मात्र एक दो ग्रास करने मात्र से, लेने मात्र से नहीं, पूरा भोजन हो जाएगा तो आपकी संपूर्ण भूख निवृत्त होगी, आपके अंदर तृप्ति आएगी, पूर्ण भोजन का फल है ये। ऐसे उपासना जब पूर्ण हो जाए तो उस पूर्ण उपासना का फल बताया जा रहा है तद्वनम, इस गुण से विशिष्ट ब्रह्म की जब उपासना पूर्ण होगी तो उपास्य में जो गुण था तद्वनत्व गुण वह उपासक में आ जाएगा। तद्वन का अर्थ है कि प्राणी मात्र का सेव्य, सभी प्राणी जिसकी सेवा करना चाहते हैं किसी की प्रेरणा के बिना अनायास ही भजन में जिसके प्रवृत्त होना चाहते हैं वह, तो जब उपासक की भी उपासना का परिपाक होगा तद्वनम इस नाम से, नाम का इस नाम का आधार लेकर के ब्रह्म की आप उपासना करोगे, आपकी उपासना पूर्ण होगी तो आपकी सेवा करने की प्राणी मात्र के अंदर स्पूर्णा होगी, आप प्राणी मात्र के सेव्य बनेंगे। ये यहां पर तद्वनम इस नाम से ब्रह्म उपासना का फल बताया कि स एतद एवं वेद, यानी जो तद्वनम इस नाम से इस ब्रह्म की उपासना करता है तो उपासक को भी उपास्य के तरह ही तद्वनत्व प्राप्त होता है, का मतलब प्राणी मात्र का वह उपासक भी सेव्य बन जाता है। यह सगुण ब्रह्म की उपासना का गौण फल है, यानी केवल तद्वन इस गुण का फल बताया गया, मुख्य फल का वर्णन तो आगे वाले मंत्र में श्रुति कर रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।